उमैरा अहमद का नॉवल आबे हयात, कैसेट नंबर 7। सालार के फोन करने पर उसे फोन रिसीव करना ही पड़ा। तुमने फोन बंद किया था? वो हैरत से पूछ रहा था। हाँ, क्यों? ताकि तुम्हारा वक्त जाया ना हो। मैंने कल ही एक मैगजीन में पढ़ा था कि जिन मर्दों को एहसास कमतरी होता है वो अपनी बीवियों को ना अपनी झूठी मसरूफियात के किस्से सुनाते रहते हैं ताकि इनकी बीवियों को इंप्रेशन मिले कि वो बहुत अहम है और दुनिया उनके बगैर नहीं चल सकती। इससे इनकी सेल्फ स्टीम बढ़ती है। सालार हक्का बक्का होकर उसकी बातें सुन रहा था और उसे इन बातों का कोई सरपैर समझ नहीं आ रहा था। उसने आखिरी जुमला कहकर कुछ देर सालार के रद्देअमल का इंतजार किया। वो खामोश था। इमामा को खदशा हुआ कि शायद कॉल ड्रॉप हो गई है। हेलो, मैं सुन रहा हूं। इस मैगजीन में बस इतना ही लिखा था। वो संजीदा लग रहा था लेकिन बात संजीदा नहीं थी। हां, गुड। डेंटिस्ट के पास गई तुम? उसने किसी रद्देअमल का इजहार किए बगैर बात बदली। इमामा की झंझलाहट में इजाफा हुआ। वो ऐसा नहीं चाहती थी, वो इससे बहस करना चाहती थी। 2 घंटे के बाद उसने उन 2 हफ्तों का प्रोग्राम चार्ट इसे ईमेल कर दिया। कॉन्फ्रेंस की ऑर्गेनाइजिंग बॉडी की तरफ से शुरका को भेजे हुए इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने में इसे कम से कम 15 मिनट लगे। उसके 15 दिन का स्केड्यूल वाकई बहुत हेक्टिक था। ये ईमेल उसे उसके किस जुमले की वजह से की गई थी वो अंदाजा कर सकती थी, लेकिन उसके बावजूद इसने जवाबी ईमेल में स्केड्यूल के बारे में एक लफ्ज कहा ना ही अपनी शर्मिंदगी का कोई इजहार किया। उस दिन सालार ने उससे पूछा, तुमने फुरकान के घर डिनर पर जाना क्यों छोड़ दिया? मेरी मर्जी। वो कहना चाहती थी कि डिनर टेबल पर फुरकान को या उसकी बेटी को देखते हुए उसे वो बहुत याद आता था और वो हर रोज डिनर के बाद कुछ ज्यादा अपसेट हो रही थी, इसलिए उसने वहां जाना छोड़ दिया था। लेकिन वो ये सब नहीं कह सकती थी। देखो, मैं जानता हूं तुम बहुत बहादुर हो, अकेले रह सकती हो तो डिनर करना भी तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। फिर भी उनके घर चली जाती तो कोई एक्टिविटी मिल जाती। इन बेकार नॉवेल्स को पढ़ने के अलावा भी कुछ होता तुम्हारे पास। तुम्हें क्या परवाह है? मुझे तुम्हारी परवाह है। ये डेढ़ ईंट की मस्जिद बनाकर बैठना छोड़ दो। तुमने मुझे नसीहतें करने के लिए फोन किया? तो करते रहो, तुम पर कोई असर नहीं होगा। यही कहना चाहती हो ना तुम? तुम बाहर जाकर ना मुझसे मिसबिहेव करने लगे हो। क्या? सालार को लगा उसे सुनने में कोई गलती हुई है। मैं बार बार नहीं दोहरा सकती अपनी बात। मैं मिसबिहेव कर रहा हूं तुम्हारे साथ? हां, मैं अगर तुम्हें कोई अकल की बात समझाता हूं तो मैं मिसबिहेव करता हूं तुम्हारे साथ। अब तुम ये कहना चाह रहे हो मैं बेवकूफ हूं? सालार का तो दिमाग घूमकर रह गया। मैंने कब कहा है तुम बेवकूफ हो? अब तुम मुझे झूठा कह रहे हो? क्या हो गया है मामा तुम्हें? पानी पियो जाके। क्यों पियो? अच्छा मत पियो। मौसम कैसा है बाहर का? वो मौजू बदलने की कोशिश कर रहा था मगर वो इमामा के रद्दे अमल पर बुरी तरह हैरान था। मैं अगर तुम्हें कोई अकल की बात समझाता हूं तो मैं मिसबिहेव करता हूं तुम्हारे साथ। अब तुम ये कहना चाह रहे हो मैं बेवकूफ हूं? सालार का दिमाग घूमकर रह गया। मैंने कब कहा तुम बेवकूफ हो? अब तुम मुझे झूठा कह रहे हो? क्या हो गया है मामा तुम्हें? हां, अब तुम कह दो मेरा दिमाग खराब हो गया। पानी पियो जाके। क्यों पियो? अच्छा मत पियो। मौसम कैसा है बाहर का? वो अब मौजू बदलने की कोशिश कर रहा था मगर वो इमामा के इस रद्दे अमल पर बुरी तरह हैरान था। इमामा, कोई परेशानी है तुम्हें? अगले दिन वो नौशीन के साथ उसके कहने पर फोर्ट्रेस आई थी। जब साथ साथ चलते नौशीन ने अचानक उससे पूछा। वो चौंक गई। नहीं नहीं तो क्यों? फिर इस तरह गुमसुम सी क्यों? नहीं, मैं कुछ सोच रही थी। सालार के साथ बात होती है ना तुम्हारी? कोई झगड़ा तो नहीं है? नहीं तो रोज बात होती है। उसने बेख्तियार मुस्कुराने की कोशिश के साथ ही डिस्प्ले पर लगे एक सूट की तरफ नौशीन को मुतवज्जा किया। वो उसे ये कैसे बताती कि यहां उसके साथ फिरते हुए उसे सालार बुरी तरह याद आता है। 2 हफ्ते में 2 या 3 बार उसके साथ वहां आकर कॉफी या चाय पीते हुए इसी तरह विंडो शॉपिंग करते थे जिस तरह वहां से गुजरते हुए कुछ दूसरे जोड़े कर रहे थे। वो उसे कैसे याद ना आता। सालार अगर उसके बनते बिगड़ते मूड को नहीं समझ पा रहा था तो वो खुद भी अपने आप को नहीं समझ पा रही थी। वो सारा दिन उसके बारे में सोच सोच कर उदास होती रहती और उससे बात करते हुए वो बिला वजह से झगड़ती। उसे उस पर शदीद गुस्सा आता था, और क्यों आता था ये उसकी समझ से बाहर था। वो कई सालों बाद इतने लंबे डिप्रेशन का शिकार हुई थी और जिंदगी में पहली बार 3 हफ्तों में वो एक नॉवल भी मुकम्मल नहीं कर पाई थी। पेंटिंग तो खैर दूर की बात थी। वो सारा दिन टीवी ऑन किए उसकी कॉल के इंतजार में बैठी रहती, या फिर कंप्यूटर ऑन किए पुरानी ईमेल्स पढ़ते किसी नई ईमेल के लिए बैठी रहती। चंद लाइंस की वो ईमेल्स जिनमें वो उसका हाल पूछता था और अपनी एक्टिविटी बताते हुए उससे पूछता था कि वो क्या कर रही है, वो इन ईमेल्स को दर्जनों बार पढ़ती। एक लंबा चौड़ा जवाब लिखकर उसकी ईमेल के इंतजार में सारी सारी रात उसकी चीजें निकालकर साफ करके रीअरेंज करती, या फिर उसकी कलेक्शन में मौजूद चार्लीज थेरन की मूवीज देखती रहती। ये वाकई बेबसी की हद थी कि उसे वो एक्ट्रेस भी अब बुरी लगना बंद हो गई थी जिसको वो पहले सालार के सामने देखना भी पसंद नहीं करती थी। हर रोज खाने की टेबल पर वो उसके बर्तन भी लगा देती, ये जैसे खाने की टेबल पे अपनी तन्हाई दूर करने की कोशिश थी। रात को सोने के लिए अपने बिस्तर में लेटे वो लाइट ऑफ करने के बाद भी करवट लिए कितनी कितनी देर उसके बिस्तर और सरहाने को देखती रहती। ईद के लिए सांबा जाने तक घर की इस खामोशी और तन्हाई ने इसे मुकम्मल तौर पर हवास बाख्ता कर दिया था। इस्लामाबाद से आने के बाद भी उसने खुद को बेहतर महसूस नहीं किया। सालार की पूरी फैमिली में से सिर्फ अम्मार और युसरा ईद मनाने के लिए वहां मौजूद थे, बाकी अफराद बैरून मुल्क ही थे। पिछली ईद जैसी रौनक इस बार वहां नहीं थी। सालार ने तैयबा को उसकी ईद की शॉपिंग करवाने के लिए कहा था, वो बड़े बुझे दिल के साथ उसके साथ चली गई, लेकिन पिछली ईद जैसा इश्तियाक इस बार इसे कपड़ों के लिए नहीं था। इस्लामाबाद आकर यह भी पहली बार हुआ था कि उसने गेस्ट रूम की खिड़की से लगकर अपने घर वालों में से किसी के नजर आने का इंतजार भी नहीं किया। ईद की सुबह पहले की तरह इस बार भी वो सालार की कॉल पर ही उठी। वो मॉन्ट्रियल में अपना सेशन खत्म करके कुछ देर पहले होटल आया था। कौन से कपड़े पहन रही हो तुम आज? तुम्हें बताने का फायदा? मैं तसव्वुर करना चाह रहा हूं कि तुम कैसी लग रही होगी। मेरे सामने तुमने कभी मेरे कपड़ों को गौर से देखा नहीं था, अब वहां बैठ के क्या तसव्वुर करोगे? इमामा, हम कम अज कम आज आर्ग्यू नहीं करेंगे, सालार ने मदाखलत करते हुए जैसे पेश की जंगबंदी का ऐलान किया। तुम्हें क्या चाहिए आज? फ्लावर्स और केक तो मम्मी से मैंने कहा था तुम्हारे लिए, कुछ और चाहिए?
नहीं।
मुझे मिस तो नहीं कर रही ना तुम? सालार ने तो मजाक किया था, लेकिन उसने जैसे उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। उसने अपनी आस्तीन के साथ आंखों को रगड़कर साफ करने की कोशिश की। वो उसकी खामोशी पर गौर किए बगैर बात कर रहा था। कनाडा में ईद पहले ही हो चुकी थी और ईद के दिन भी कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था वो। वो जिंदगी में कई ईदें इसी तरह गुजार चुका था। पिछली ईद इसे कम अज कम इस ईद वाले दिन अपनी मसरूफियात की वजह से याद नहीं आ सकी थी, लेकिन पिछली ईद इमामा को पिछले 2 दिन से तंग कर रही थी।
कब की फ्लाइट है तुम्हारी?
उसने कोशिश की थी कि उसकी आवाज बात करते हुए ना भर्राए। यह अहमकाना चीज थी, बाकी चीजों पर रोना ठीक था, लेकिन कम अज कम वो उसके सामने उसके ना होने के लिए नहीं रो सकती थी। बड़ी शर्मिंदगी महसूस करती अगर वो ये जान जाता कि वो उसे मिस कर रही थी। वो अब उसे फ्लाइट का बता रहा था।
तुमने मुझे कपड़ों का कलर नहीं बताया, तुमने मम्मी के साथ जाकर कपड़े लिए थे ना?
हाँ लिए हैं मैंने, जो आज पहनूंगी वो हेजल ग्रीन है।
हेजल ग्रीन? वो तो आंखें होती हैं।
आंखों का कलर होता है।
हाँ हाँ
ओह, आज मैं जेनिफर की आंखों को गौर से देखूंगा।
क्यों?
उसकी आंखों में मुझे अपनी वाइफ के कपड़ों का कलर नजर आएगा।
इमामा, जब से मैं यहां आया हूं आज पहली बार तुम हंसी हो,
और शादी के बाद इतने महीनों में ये पहला कलर है जिसे तुमने आइडेंटिफाई किया है, वो भी किसी औरत की आंखों की वजह से।
तुम जेलस हो रही हो?
हाँ, अब बस यही तो एक काम रह गया ना मेरे करने के लिए।
यानी नहीं हो रही या नहीं हो सकती? हाँ,
उसकी खामोशी पर वो हंस दिया। इसमें हंसने की कौन सी बात है?
अपनी खुशफहमी पर हंसूं? तुम कम अज कम किसी औरत से मेरे लिए तो जेलस नहीं हो सकती। वो उसे तंग कर रहा था और वो जानती थी उसका इशारा रमशा की तरफ था। तो मुझे बस ये बता दो कब आ रहे हो। इससे बात बदलना उसने बेहतर समझा और वही घिसा पिटा सवाल किया जो वो उससे रोज करती आ रही थी। वो ईद के दूसरे दिन रात की फ्लाइट से वापस लाहौर आ गई थी क्योंकि अगली सुबह 8 बजे की फ्लाइट से वो वापस आ रहा था। वो जूद रंजी और हसासियत जो पिछले 4 हफ्तों से उसे नाखुश रखे हुए थी वो एकदम जैसे कहीं गायब हो गई थी। और 4 हफ्ते के बाद बिलाखिर उसने केक का वो टुकड़ा और वो कैन डिस्पोज ऑफ कर दिए थे। अगर फुरकान को सीधा अस्पताल से एयरपोर्ट न जाना होता तो वो खुद इसे रिसीव करने चली जाती। वो कुछ इतनी ही एक्साइटेड हो रही थी। 9:45 पर बिलाखिर डोर बेल बजी। उसे दरवाजे तक पहुंचने में सेकेंड्स ही तो लगे। खुदाया, क्या खुशी इसको कहते हैं जिस शख्स के चेहरे पर पहली नजर डालते ही उसने महसूस की। उसने दरवाजा खोलकर डोर हैंडल पर अपना कपकपाता हाथ रखे सालार को देखकर अचंभे से सोचा। फुरकान से बातें करता दरवाजा खुलने की आवाज पर वो सीधा हुआ और इन दोनों की नजरें मिली। वही गर्म जोश मुस्कुराहट जिसकी वो आदी थी और हमेशा की तरह सलाम में भी पहल उसी ने की थी। उसे देखते ही चंद लम्हों के लिए वो साकित हो गई। इमामा, सामान की डिलीवरी देने आया हूं, चेक कर लो कोई ब्रेकेज या डैमेज तो नहीं। फुरकान ने एक सूटकेस खींचकर अंदर ले जाते हुए उसको छेड़ा। सालार मुस्कुराया। इमामा ने सलाम का जवाब देने की कोशिश की थी लेकिन यूं जैसे उसके गले में कोई गिरह लग गई थी। बात गले की गिरह तक रहती तो ठीक थी लेकिन आंखों में पानी कैसे और क्यों आ गया। वो आगे बढ़ा और उसने हमेशा की तरह उसे गले लगाया जैसे वो ऑफिस से आने के बाद लगाया करता था। बेसाख्ता आंसुओं का एक और रेला आया। यही चीज तो वो ढूंढती फिर रही थी पिछले 4 हफ्तों से। यही नर्म लम्स, अपने गिर्द बाजुओं का यही हिसार। उसके साथ लगे उसने पहली बार महसूस किया कि उसके जिस्म से उठती कलोन की महक ड्रेसिंग टेबल पर कलोन की शीशी से उठती महक से बिल्कुल अलग थी। वो इसके जिस्म पर लगने के बाद ज्यादा मसहूर कुन थी। कैसी हो तुम, वो उससे पूछ रहा था। गले की गिरहें और बढ़ गईं। उसने अब इसे खुद से अलग किया और उसका चेहरा और आंसू देखे। क्या हुआ, वो ठटका और सूट के अंदर ले जाते हुए फुरकान ने पलट कर देखा।
कुछ नहीं, अभी वो सलाद के लिए प्याज काट रही थी।
फिर शायद उसे खुद ही ये बहाना कमजोर लगा।
सर में भी कुछ दर्द था ना, फ्लू था।
वो फुरकान की मुस्कुराती हुई नजरों से कुछ गड़बड़ाई। सालार ने फुरकान को नजरअंदाज किया और उसको एक बार फिर अपने साथ लगाया। तो यार कोई मेडिसिन लेनी थी ना।
मैं कुकिंग रेट पे कुछ रख के आई हूं। मैं आई,
वो रुके बगैर तेजी से किचन में चली आई। उसके सामने खड़े रहकर उसे नजरें मिलाकर झूठ बोलना बड़ा मुश्किल हो गया था। सिंह में चेहरे पर पानी के छपाके मारने के बाद उसने कुछ पानी पिया। आवाज की थरथराहट सिर्फ इसी तरह खत्म हो सकती थी। वो दोनों अब इसके उकब में लाउंज में किचन काउंटर के पास खड़े बातें कर रहे थे और इनमें से कोई भी इसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था। वो अपना चेहरा किचन रोल से थपथपा कर गहरे सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने लगी।
अरे यार बैठो ना, खाना तो खा कर जाओ, वो जब लाउंज में आई तो सालार फुरकान से कह रहा था।
अरे नहीं यार, इस वक्त खाने पर इंतजार कर रहे होंगे बच्चे, कुछ दिनों के बाद चलेंगे कहीं डिनर के लिए,
वो बैरूनी दरवाजे की तरफ जाते हुए बोला। सालार दरवाजे तक उसे छोड़ने गया। वो किचन में आकर खाने के बर्तन लगाने लगी। वो दरवाजे से वापसी पर किचन में सेल फोन पर बात करते हुए आया था। फोन पर सिकंदर थे। इमामा ने इसे किचन काउंटर पर रखी पानी की बोतल को खोलते देखा। फोन कंधे और कान के बीच दबाए उसने बोतल का ढक्कन खोला। इमामा ने उसके ग्लास की तरफ जाने से पहले एक ग्लास लाकर उसके सामने काउंटर पर रख दिया। सालार के हाथ से बोतल लेकर उसने ग्लास में उसके लिए पानी डाला। सालार ने सिकंदर से बात करते हुए सर के इशारे से उसका शुक्रिया अदा किया और पानी का घूंट भरते हुए कहा, पापा खैरियत पूछ रहे हैं तुम्हारी। फ्रिज का दरवाजा खोलते हुए वो मुस्कुराई।
मैं अब ठीक हूं,
सालार ने उसके जुमले पर गौर किए बगैर सिकंदर तक उसका जुमला पहुंचा दिया। काउंटर पर पड़े सलाद में से सेब का एक टुकड़ा कांटे से उठाकर मुंह में डालते हुए वो इसी तरह फोन पर सिकंदर से बात करते हुए किचन से निकला। इमामा ने उसे टेरेस का दरवाजा खोलकर टेरेस के पौधों पर नजर दौड़ाते देखा। टेबल पर बर्तन रखते हुए उसकी आंखों में एक बार फिर नमी आई। 1 महीने के बाद ये जगह उसे घर लगी थी और उसकी वजह घर में गूंजती वो आवाज और इधर से उधर जाता वो वजूद था। बर्तन रखने के बावजूद जैसे वो बेख्तियारी के आलम में टेबल के पास खड़ी फोन कान से लगाए सालार को टेरेस पर इधर से उधर टहलते हुए देख रही थी। बात मोहब्बत की नहीं,
आदत की थी, उसे इसकी आदत हो गई थी, और आदत बाज दफा मोहब्बत से भी ज्यादा जानलेवा साबित होती है। उसे अचानक ख्याल आया कि वो खाना खाने से पहले कपड़े तब्दील करेगा। बेडरूम में जाकर वो उसके लिए कपड़े निकालकर वॉशरूम में लटका के आई। वो वॉशरूम से निकल ही रही थी जब वो बेडरूम में आया। मैं शावर लेकर खाना खाऊंगा, वो ना भी कहता तो वो जानती थी। वो सफर से वापसी पर हमेशा नहा धोकर खाना खाता था। मैंने तुम्हारे कपड़े और टॉवल्स रख दिए हैं, और ये मैं तुम्हारे लिए नए स्लीपर्स लेके आई थी। वो स्लीपर्स का डब्बा शू रैक से निकालते हुए बोली, रहने दो इमामा, मैं खुद ही निकाल लूंगा। रिस्ट वॉच उतारते हुए उसने इमामा को मना किया। उसे कभी भी किसी दूसरे का अपने जूते उठाना पसंद नहीं था, वो जानती थी, लेकिन उसके मना करने के बावजूद वो स्लीपर्स निकाल कर लाई। कुछ नहीं होता, वह बेड पर बैठा अपने जूते और जुराबे उतार रहा था और बेमकसद से उसके पास खड़ी उसे देख रही थी। शादी के इतने महीनों में आज पहली बार वो इस तरह बेमकसद उसके पास खड़ी थी। सालार ने कुछ हैरत से नोटिस किया, ये येलो कपड़े तुमने मेरे इंतजार में पहने हैं। वो बेवजह हंसती, वो मस्टर्ड को येलो कह रहा था, लेकिन आज उसने इसकी तस्हीह नहीं की और उसने आज भी उसकी तारीफ नहीं की थी, मगर उसे यह बुरा नहीं लगा था। नाइस स्लीपर्स, अपनी जुराबे और जूते उठाते हुए उसने स्लीपर्स पहने और इमामा से कहा, मैं रखती हूं। इमामा ने जूते और जुराबे उससे लेने की कोशिश की। क्यों यार, पहले कौन रखता है? सालार ने कुछ हैरत से उसे रोका। इमामा रुक गई, वाकई वो अपने जूते खुद उठाने का आदी था। जूते शू रैक में रखते हुए उसने लॉन्ड्री बास्केट में जुराबे डाली और वॉशरूम में घुस गया। इमामा ने बेड साइड टेबल पर पड़ी उसकी रिस्ट वॉच और सेलफोन को देखा। हर खाली जगह भरने लगी थी। वो जब तक नहाकर आया, इमामा खाना लगा चुकी थी। सालार ने डाइनिंग टेबल पर नजर डालते हुए बेख्तियार कहा, इमामा क्या क्या पका रखा है यार? जो जो तुम्हें अच्छा लगता है। मुझे? वो कुर्सी खींचकर बैठते हुए टेबल पर फैली डिशेस को देखकर जैसे किसी सोच में पड़ा। तुमने यार अपना वक्त जाया किया। कोई और वक्त होता तो वो पूरे दिन की मेहनत पर बोले जाने वाले इस जुमले पर बुरी तरह नाराज होती, लेकिन आज उसे कुछ बुरा नहीं लग रहा था। किसी बात पर गुस्सा नहीं आ रहा था, वो इतनी ही सरशार थी। मैंने अपना वक्त तुम्हारे लिए इस्तेमाल किया है, उसने मध्यम आवाज में सालार की तस्हीह की। लेकिन तुम थक गई होगी ना?
नहीं, क्यों थकूंगी मैं?
उसने चावलों की डिश सालार की तरफ बढ़ाई। सालार ने उसकी प्लेट में हमेशा की तरह पहले चावल डाले। अपनी प्लेट के कोने में पड़े इन चावलों को देखकर उसका दिल भर आया। तो इतने दिनों से ये चीज थी जो वो मिस कर रही थी खाने पर, और ये एक चीज नहीं थी, वो अब अपनी प्लेट में चावल डाल रहा था। एक महीने के बाद वो उसके इतने करीब बैठी थी, खाना सर्व करते हुए उसके हाथ देख रही थी। सफेद शर्ट की आस्तीनें मोड़े उसके हाथों ने हमेशा की तरह उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। उसने बमुश्किल वहां से नजर हटाई। उसका दिल बेख्तियार उसके हाथ छूने को चाहा था। उसने खुद को संभालने की कोशिश की। वो उसके करीब हो और वो सिर्फ खाने की तरफ मुतवज्जा रहे, इस वक्त उसके लिए मुश्किल हो रहा था।
पेंटिंग्स मुकम्मल हो गई तुम्हारी?
खाना शुरू करते हुए उसने पूछा। इमामा ने चौंक कर टेबल पर पड़ा कांटा और चम्मच उठाया।
कौन सी पेंटिंग्स?
उसने बेख्याली में कहा और वो ठटका।
तुम बना रही थी ना कुछ शायद? तुम ये लो ना।
जवाब देने की बजाय उसने एक और डिश उसकी तरफ बढ़ाई।
डर तो नहीं लगा था तुम्हें अकेले रहते हुए?
खाना अच्छा है ना? इमामा ने एक बार फिर जवाब गोल कर दिया। वो मजीद झूठ नहीं बोल सकती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो सच भी नहीं बोल सकती थी।
हमेशा ही अच्छा होता है, वो मुस्कुराया।
कितने नॉवेल्स पढ़े तुमने? ये चॉप्स भी हैं, ये लो ना। उसने एक और डिश सर्व की। तुम्हारी फ्लाइट ठीक रही? इससे पहले कि वो कोई और मुश्किल सवाल करता, उसने पूछना जरूरी समझा।
ओवरऑल कुछ बम्पी रही लेकिन ठीक थी।
कॉन्फ्रेंस भी अच्छी रही?
एक्सीलेंट। वैसे तुम्हारी क्या रूटीन थी?
वो इसे मौजू से हटाने में कामयाब नहीं हुई थी।
मेरी रूटीन? हाँ, क्या क्या करती थी सारा दिन?
जो पहले किया करती थी।
लेकिन तब तो बहुत ज्यादा वक्त होता होगा ना तुम्हारे पास?
सारी शाम, सारी रात।
अरे फिर तो ऐश हो गए तुम्हारे।
अपनी प्लेट में कोरमा निकालते हुए उसने मुस्कुरा कर कहा।
इमामा ने जवाब देने की बजाय अपनी प्लेट को देखा जिसमें चीजों का ढेर बिल्कुल इसी तरह पड़ा हुआ था। इससे कुछ खाया नहीं जा रहा था। सालार को इतनी रग़बत के साथ खाते देखकर उसे यूं लग रहा था जैसे उसका पेट भर रहा हो। तुम सईदा अम्मा को यहां ले आती ना?
मैंने कहा था उनसे, लेकिन तुम्हें पता है ना, वो इतने दिनों के लिए अपना घर नहीं छोड़ सकती।
दैट्स अंडरस्टैंडेबल। सालार ने खाना खाते हुए बेख्तियार एक निवाला इसकी तरफ बढ़ाया। वो आखिरी लुकमा हमेशा उसे खिलाता था। एक लम्हे के लिए वो ठटकी, फिर उसने लुकमा मुंह में ले लिया, लेकिन वो इसे चबा नहीं सकी। वो लुकमा जैसे उसके लिए आखिरी हद साबित हुआ। वो बेख्तियार रो पड़ी। सालार पानी पीते पीते यकदम रुक गया।
क्या हुआ?
वो हक्का बक्का था, होंठों पर हाथ रखे वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोती गई।
क्या हुआ है मामा?
वो बुरी तरह बदहवास हुआ। कम से कम इस वक्त इस तरह की गुफ्तगू के दौरान आंसू, वो इनकी वजह तलाश नहीं कर सका। एक दफा आंसू बह जाने के बाद सब कुछ आसान हो गया। मजीद रोना, बेबसी का इजहार और कमजोरी का एतराफ। अब मजीद दीवारें खड़ी रखने की जरूरत नहीं थी।
फॉर गॉड सेक्स, तुम पागल कर दोगी मुझे? क्या हुआ है? सब कुछ ठीक रहा है ना मेरे बाद? किसी ने परेशान तो नहीं किया?
वह मुकम्मल तौर पर हवास बाखता था। इमामा ने आंखें रगड़ते हुए खुद पर काबू पाने की कोशिश करते हुए सर हिलाया।
तो फिर रो क्यों रही हो?
ऐसे ही बस। सालार, मैं तुम्हें बहुत मिस करती थी इसलिए।
क्या शर्मिंदगी सी शर्मिंदगी थी जो उसने ये एतराफ करते हुए महसूस की थी। सालार को लगा उसे सुनने में कुछ गलती हुई थी। किसको मिस किया?
तुम्हें।
उसने सर झुकाकर दोबारा से रोना शुरू कर दिया। वो चंद लम्हों के लिए साकित हो गया।
मुझे? किस लिए?
ये बेयकीनी की इंतहा थी। वो रोते रोते ठटकी। उसने सर उठाकर देखा उसे और फिर बेहद खफगी के आलम में टेबल से अपनी डिनर प्लेट उठाते हुए किचन की तरफ बढ़ गई।
मेरा दिमाग खराब हो गया था इसलिए।
शादी के तकरीबन 4 माह में उसने पहली बार ये जुमला उससे कहा था, वरना वो आई लव यू के जवाब में भी थैंक यू कहने की आदी थी। वह बर्तन उठा उठा कर अंदर ले जा रही थी और सालार हवनक सा बना पानी का गिलास हाथ में लिए खड़ा उसे अपने सामने से बर्तन हटाते देख रहा था। वो उसके रोने से कभी इतना हवास बाखता नहीं हुआ जितना उसके इस एतराफ से हो गया था। वो शौक ना होता तो क्या करता। वो 4 हफ्ते पहले बड़े धड़ल्ले से उसे कह रही थी कि और पानी का गिलास हाथ में लिए बुद्ध की तरह कुर्सी पर बैठे कोई उसके सामने जैसे किसी मामे के टुकड़े तरतीब देने लगा था। वो 4 हफ्ते बाहर रहकर उसके जिस रवैये को समझने की कोशिश में नाकाम हो गया था वो अब समझ में आ रहा था। ये नाकाबिले यकीन था, कम अज कम उसके लिए, कि इमामा उसे मिस कर रही थी। उसने गर्दन मोड़कर उसे देखा। वो आंखें रगड़ते हुए चीजें समेट रही थी। ग्लास टेबल पर रखकर वो किचन में आया। वो फ्रिज से स्वीडिश निकाल रही थी। सालार ने उसके हाथ से डोंगा पकड़कर काउंटर पर रखा। कुछ कहे बगैर उसे अपने गले लगाया, यूं जैसे तलाफी कर रहा हो, माजरत कर रहा हो। वो खफगी से अलग होना चाहती थी, उसका हाथ झटकना चाहती थी, लेकिन बेबस थी। फिलहाल दुनिया में वो वाहिद शख्स था जो उसे इस तरह गले लगाता था। बरसात फिर होने लगी। वो उसकी आदतें खराब कर रहा था, किसी पैरासाइट की तरह उसे अपना मोहताज कर रहा था। वहां खड़े दोनों के दरमियान एक लफ्ज का तबादला नहीं हुआ, कोई माजरत, कोई इजहारे मोहब्बत, कुछ नहीं। जिंदगी के इस खेल में लफ्ज फालतू थे जिसमें वो लीड कर रहे थे। बरसात थमने लगी।
दरअसल मैं घर में अकेली थी ना, बस इसलिए मिस करती थी।
इनकार, इकरार, एतराफ, फिर इनकार। ये मशूकी औरत की जिंदगी का दायरा था। वो भी इसी दायरे में घूमने लगी। झूठ की जरूरत फिर आन पड़ी थी। अपने गिर्द खड़ी दीवार के शिगाफ को उसने फिर से भरना शुरू किया।
हाँ, अकेले हूं तो ऐसा ही होता है।
इमामा का हौसला बढ़ा। सालार ने उस झूठ को सच बनाने में उसकी मदद की थी।
दांत में दर्द भी था ना, तो बस वो इसलिए मुझे रोना आ गया।
मुझे अंदाजा है, दांत का दर्द बहुत तकलीफ दे होता है। एक दफा हुआ था मुझे, मैं जानता हूं क्या हालत होती है।
एक दूसरे के सामने खड़े वो नजरें मिलाए बगैर झूठ बोल रहे थे।
वो अब वो अटक रही थी।
अब तीसरा झूठ जहन में नहीं आ रहा था। जो सवाल आ रहा था उसने वही पूछ दिया।
तुमने मुझे मिस नहीं किया?
वो फिर गली के उसी मोड़ पर आकर खड़े हो गए। वो उसकी आंखों में आंखें डाले कहने लगा, किया? हर दिन, हर घंटा, हर मिनट, हर सेकंड। और इमामा की आंखों में जैसे सितारे झिलमिलाने लगे। बाज दफा हम कोई फिलॉसफी, कोई हकीकत नहीं सुनना चाहते, बस वही रिवायती बातें सुनना चाहते हैं जिन्हें फिल्म के पर्दे और किताब के सफ़े पर हम हजारों बार पढ़ते हुए हंसते हैं। वो भी रिवायती बातें कर रहा था, वही जुमले जो इस वक्त वो उसके मुंह से सुनना चाहती थी। 4 हफ्ते तुम्हारे साथ नहीं था, अगर तुम्हारा ख्याल ना आता ना तो मैं मर जाता।
तुम झूठे हो,
वो तो तुम भी हो, सालार ने बेसाख्ता जताया। वो रोते हुए हंस रही थी या हंसते हुए रो रही थी, लेकिन 4 माह में पहली बार सालार के लिए वो बरसात काबिले एतराज नहीं थी। इतने अरसे में उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो बरसात उसे कभी भी डुबो सकती है। वो उस रात बेड पर उसे चंद इंच दूर करवट के बल लेटे कोहनी तकिए पर टिकाए उससे बातें करती रही। 1 महीने के दौरान इकट्ठी हो जाने वाली सारी बातें, बेमकसद बेमायनी चीजों और वाकयात की तफसीलात, किसकी कॉल आई, किससे इसकी क्या बात हुई, मुलाजमा ने उससे क्या कहा, टीवी पर चलने वाले किसी प्रोग्राम में उसने क्या देखा, कौन से मैगजीन में उसने क्या पढ़ा, टेरेस पर रखे कितने पौधों पर कितने नए फूल निकले, फुरकान और नौशीन के बच्चे कितनी बार उसके घर आए, वो नौशीन के साथ कितनी बार बाजार गई, क्या खरीदा, क्या पसंद नहीं आया। उसे अंदाजा नहीं हुआ कि सिर्फ वो बोल रही थी। सालार बिल्कुल खामोश लेटा उसका चेहरा देखते हुए उसे सुन रहा था। एक हाथ पर सर टिकाए वो दूसरे हाथ से गैर महसूस अंदाज में उसके बाजू पर उंगली से छोटे बड़े दायरे बनाते हुए उससे बातें करती रही। वो खामोश सामे पलके झपकाए बगैर सिर्फ उसके चेहरे को देख रहा था। उसकी आंखों के तासुरात, उसके चेहरे पर झलकने वाले रंग, उसके होंठों की हरकत, बात करते हुए उसकी हंसी की खिलखिलाहट, उसके चेहरे पर खिलने वाले रंग, वो जैसे सिनेमा की फ्रंट रो में बैठा एक सहरज़दा नाजर था। कोहनी के बल नीम दराज जब वो थक जाती तो फिर उसके कंधे पर सर रखते हुए कहती, अच्छा चलो अब सो जाते हैं। वो जुमला शायद वो अब तक 25 दफा कह चुकी थी। उसके कंधे पर सर रखे उसे फिर कुछ याद आता। वो यकदम सर उठाकर उसका चेहरा देखते हुए पूछती, मैंने तुम्हें बताया कि? सालार नफी में सर हिला देता और गुफ्तगू फिर दोबारा वहीं से शुरू हो जाती। खामोश सामे फिर वही फिल्म देखने लगता। ये कौन सी अजान हो रही है? दूर कहीं से उसने अजानों की आवाज सुनी तो चौंक गई। फजर की, सालार ने बड़े पुरसकून अंदाज में कहा। ओ माय गॉड, फजर हो गई और मैं, उफ, तुम्हें तो सोना चाहिए था, तुम थके हुए थे, मुझे पता ही नहीं चला। तुम मुझे कह देते ना, मुझसे कहना चाहिए था ना, क्यों नहीं कहा तुमने? वो एकदम नादिम हो गई। क्या कहता? यही कि तुम सोना चाहते हो मैं चुप कर जाऊं। लेकिन मैं सोना तो नहीं चाहता था, लेकिन मुझे तो वक्त का पता ही नहीं चला, कम से कम तुम्हें बताना चाहिए था ना। वो वाकई बहुत शर्मिंदा हो रही थी। तुम्हारा ख्याल है मुझे वक्त का एहसास था। तुम सो जाओ अब, आई एम वेरी सॉरी, उफ कितनी फजूल बातें की मैंने तुमसे, तुम भी क्या सोच रहे होगे। उसे अब एहसास हुआ वो कितनी देर से अकेले ही बोले जा रही थी और वो हूं हाँ तक नहीं कर रहा था। मैं तो नमाज पढ़ के सोऊंगा अब, और मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि आज तुमने मुझसे इतनी बातें कैसे कर ली। तुमने गौर से सुनी भी नहीं होंगी मेरी बातें। अच्छा, एक एक बात सुनी है, चाहो तो शुरू से दोहरा देता हूं। आज तक तुमने जब जब जो जो कहा है मुझे याद है और हमेशा याद रखूंगा। इसका लहजा हमवार था लेकिन आंखों में कोई तासुर था जिसने चंद लम्हों के लिए इमामा को बांधा था। इसी तरह बातें करोगी ना तो हर रात जाग सकता हूं तुम्हारे लिए। इमामा ने नजरें चुराई। बाज दफा उससे नजरें मिलाना उसकी बातों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता था, और बाज दफा जिंदगी के बारे में भी कुछ कहना मुश्किल हो जाता था जो वो उसके साथ गुजार रही थी। उससे कुछ दूर हटते हुए उसने तकिए पर सर रख दिया। वो अब सीधी लेटी छत को देख रही थी। साइड टेबल पर पड़े सेलफोन के यकदम बजते अलार्म को बंद करते हुए सालार ने उसकी तरफ करवट ली। कोहनी के बल नीम दराज उसने इमामा से कहा, कुछ और बताना है तुमने?
नहीं,
आई लव यू। जवाबन सालार के जुमले ने चलम्हों के लिए उसे साकित कर दिया। वो उसके पास था, उसकी आंखों में देख रहा था।
جیسے جواباً اس سے کچھ سننے کی خواہش رکھتا ہو. امامہ نے کبھی اس کی آنکھوں کو اتنی آسانی سے نہیں پڑھا تھا. شاید وہ اتنے قریب تھا اس لیے. وہ جیسے اپنی آنکھوں سے اسے ہپناٹائز کیے ہوئے تھا. تھینک یو. وہ بے اختیار ہنسا. ایک گہری سانس لے کر ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کرتے ہوئے اس نے جیسے گھٹنے ٹیک دیے. بعض خواہشیں کوشش سے پوری نہیں ہوتی اور بعض سوالوں کا جواب نہیں مل پاتا. وہاں اس کے اتنے قریب کوئی اور عورت ہوتی تو اسے اظہار محبت ہی ملتا. یہ امامہ ہاشم تھی. اس کا اظہار تشکر ہی کافی تھا. اس پر جھکتے ہوئے اس نے بڑی نرمی سے اس کا ماتھا چوما اور پھر بیڈ سے اٹھ گیا. 10 بجے کے قریب وہ اس کے ساتھ ناشتہ کرنے کے بعد ٹیبل صاف کر رہی تھی جب وہ بیڈ روم سے خوبصورت پیکنگ میں ایک باکس لے کر اس کے پاس آیا. یہ میں تمہارے لیے لایا تھا. یہ کیا ہے؟ دیکھ لو. سالار نے باکس اس کی طرف بڑھایا. جیولری ہے. اس کو لیبل اور باکس کے ڈیزائن سے کچھ اندازہ ہوا. سالار جواب دینے کے بجائے کندھے اچکا کر خاموش رہا. امامہ نے بڑے تجسس اور احتیاط سے اس باکس کی بے حد نفیس اور خوبصورت پیکنگ کو ہٹا کر باکس کھولا. سرخ مخمل جیسے ایک بے حد مہین اور چمکدار کپڑے کی تہوں کے درمیان ایک کرسٹل رنگ کیس تھا اور اس کیس سے نظر آنے والی رنگ نے کچھ دیر کے لیے اسے ساکت کر دیا. اسکوائر ڈائمنڈز کے بینڈ کے ساتھ وہ ایک پلیٹینم ٹیولپ ڈائمنڈ رنگ تھی. 14 قیرات کے اس ڈائمنڈ کے گرد ننے ننے نیلم کے گول گول نگینوں کا ایک دائرہ تھا. بہت دیر مسمرائزڈ وہ اس رنگ پر نظریں جمائے کھڑی رہی. اس نے بے اختیار گہرا سانس لے کر اپنا پہلا رد عمل دیا. یہ صرف ڈائمنڈ ہی نہیں تھے جو اس کی نظروں کو خیرا کر رہے تھے بلکہ وہ پیچیدہ ڈیزائن بھی جس میں وہ سارے جیولز جڑے ہوئے تھے. یہ بہت خوبصورت ہے. سالار نے ہاتھ بڑھا کر کرسٹل کا کیس کھول کر رنگ کو نکالا. اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے وہ رنگ اس کی انگلی میں پہنائی. یہ اب خوبصورت لگ رہی ہے. اور دیکھو یہ بالکل میری انگلی کے سائز کے مطابق ہے. وہ جیسے ایکسائٹڈ ہوئی. تمہاری انگلی کا سائز لے کر بنائی گئی ہے نا کیونکہ تمہاری ایک رنگ میں لے گیا تھا. اس رنگ نے واقعی اس کے ہاتھ کو سجا دیا تھا. وہ جس ہاتھ میں بھی ہوتی دیکھنے والے پر ایسا ہی تاثر چھوڑتی. یہ تمہارے لیے ویڈنگ گفٹ ہے. سالار نے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا. اس نے کچھ حیران ہو کر سالار کو دیکھا. ویڈنگ گفٹ؟ 4 ماہ ہو گئے شادی کو. ہاں تو میں نے تمہیں ویڈنگ گفٹ نہیں دیا تھا نا. پہلے یاد نہیں تھا, بعد میں پیسے نہیں تھے. اور اب کہاں سے آئے پیسے؟ آگے کہیں سے. کوئی غلط کام نہیں کیا میں نے. وہ بے اختیار شرمندہ ہوئی. میں نے کب کہا؟ اچھا چلو ڈاکٹر صاحب کے یہاں چلتے ہیں اور سعیدہ اماں سے بھی مل کر آتے ہیں. میرے بیگ میں کچھ گفٹس ہیں ان کے لیے, وہ بھی نکال لو. تھینک یو سالار. وہ جاتے جاتے ایک دم ٹھٹکا. کس لیے؟ ہر چیز کے لیے. یہ سب تمہارا ہی ہے ماما. امامہ نے نظریں چرائیں. میں نے سوچا تمہیں یاد بھی نہیں ہوگا کہ تم نے مجھے شادی پر کوئی گفٹ نہیں دیا. وہ واحد گلا تھا جو وہ اپنے دل میں سالار کے لیے رکھے ہوئی تھی. نہیں بھولا نہیں تھا میں. امامہ کو لگا وہ کچھ اور کہنا چاہتا ہے. سالار نے بات ادھوری چھوڑی یا بدلی یہ وہ سمجھ نہیں سکی. او مائی گاڈ, وہ دیکھو. اس دن واک پر چلتے چلتے وہ بے اختیار ٹھٹکی. سالار نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا. وہ دونوں ریس کورس میں لگنے والے ایک میلے کو دیکھنے آئے تھے اور اب بے مقصد میلے کی جگہ سے کچھ دور چہل قدمی میں مصروف تھے جب امامہ اس واک وے کے داہنی طرف والے درختوں کے اطراف پانی میں ڈوبی ہوئی گھاس میں نظر آنے والے عکس کو دیکھ کر ٹھٹک گئی. وہ پچھلی رات کی بارش کا پانی تھا جو بھی پوری طرح ڈرین آؤٹ نہیں ہو سکا تھا. دیو قامت درختوں کے تنوں اور شاخوں پر لگے رنگین برقی کمکموں اور ٹیوب لائٹس کا عکس نیچے جمع شدہ پانی میں پڑ رہا تھا. اس عکس کو دیکھ کر وہ بھی کچھ دیر کے لیے مبہوت سا رہ گیا. یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی رنگ و نور سے بھری وادی کے کنارے کھڑے ہیں, اس میں چمکتے ہوئے رنگین ہیرے جواہرات کے درخت دیکھ رہے ہیں یا الف لیلا کو کوئی منظر دیکھ رہے ہیں. ہوا کے جھونکوں سے پانی میں بہت ہلکا سا ارتعاش پیدا ہو رہا تھا اور ان روشنیوں
اور درختوں کا عکس منعکس ہو کر جیسے محو رقص تھا. تلس میں ہوش ربا جیسے پانی کی لہروں پر ڈول رہی تھی. یوں لگ رہا ہے جیسے جنت میں رات اتر رہی ہو. طویل خاموشی کے بعد اس نے اماما کی آواز سنی. وہ پلکیں جھپکائے بغیر ابھی تک اس پانی کو دیکھ رہی تھی. ایسی ہوتی ہوگی نا جنت. وہ کچھ کہنے کی بجائے دوبارہ اس پانی کو دیکھنے لگا. سالار, جنت میں ستارے ہوں گے؟ بہت سارے ہوں گے. اتنے بہت سے رنگوں کے؟
کائنات میں موجود ہر رنگ کے.
رات بھی ایسے ہی منور ہوتی ہوگی. اس سے زیادہ روشن, اس سے زیادہ منور. وہ بے اختیار جھکی اور اس نے اپنی انگلیوں سے عکس کو چھونے کی کوشش کی. سالار نے غصے سے ایک دم اسے کھینچا. کیا کر رہی ہو؟ درختوں پر لائٹس آن ہے, پانی میں کرنٹ ہو سکتا ہے. میں اسے چھونا چاہتی تھی. یہ عکس ہے, جنت نہیں ہے.
جنت میں اور کیا ہوگا؟
تم.
صرف میں اور تم نہیں ہوگے؟
پتا نہیں. پھر تم کیسے جانتے ہو میں وہاں ہوں گی؟ جنت کے علاوہ کہیں اور رکھا جا سکتا ہے تمہیں؟ اتنی آسانی سے مل جاتی ہے جنت؟
مجھے آسانی سے نہیں ملے گی.
تمہیں آسانی سے مل جائے گی.
کیوں؟ تم جتنی آسانی سے ہر چیز میں جنت ڈھونڈ لیتی ہو نا, میں آج تک نہیں ڈھونڈ سکا, اس لیے کہہ رہا ہوں.
دو دن پہلے بھی جب وہ گھر کے لیے لیمپ خریدنے گئے تھے, انہوں نے بیڈ روم کے لیے لیمپس کا ایک سیٹ خریدا اور رات کو ناول پڑھتے پڑھتے لیمپ شیڈ کو وہ دیکھنے لگی تھی. وہ ای میل چیک کرنے کے بعد اپنا لیپ ٹاپ بند کرنے لگا تو اس نے اماما کو دیکھا. وہ لیمپ شیڈ پہ نظریں جمائے بیٹھی تھی.
کیا دیکھ رہی ہو تم؟
بیوٹیفل.
کیا لیمپ شیڈ؟
اچھا ہے. وہ خوبصورت لیمپس تھے لیکن اتنے بھی نہیں کہ وہ ان پہ یوں نظریں گاڑ کے بیٹھ جائے.
یہ کون سے پھول ہیں؟
پھول؟ سالار نے حیرت سے لیمپ شیڈ کو دوبارہ دیکھا. اس نے پہلی بار اس پرل کلر کے شیڈ پر بنے پیٹرن کو دیکھا. اس شیڈ کا ٹیکسچر کچھ عجیب تھا. کاغذ نما اس کپڑے پر سنہری مائل پیلے پھولوں کا ایک بے حد مہین اور نفیس پیٹرن تھا جو صرف لیمپ کے آن ہونے پر نظر آ رہا تھا. ان پھولوں میں کہیں کہیں کرمزن کلر کی کوئی چیز چمکتی ہوئی نظر آتی, پھر مدھم پڑتی, پھر چند لمحوں کے بعد چمکتی.
نہ یہ گلاب ہیں نہ ٹیولپ ہیں. تھوڑا سا بلو بیل سے ملتا ہے لیکن وہ بھی نہیں ہے.
ایسے پھول جنت میں ہوں گے.
اچھا دیکھو, دیکھو یہ پھول رنگ بدل رہے ہیں. نہیں رنگ نہیں بدل رہے, دیکھو یہ کھل رہے ہیں.
وہ لیمپ شیڈ پر بنے پھولوں پر اب انگلی پھیر رہی تھی. سالار حیرت سے دیکھ رہا تھا. وہ پھول واقعی بار بار کھلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے.
لولی.
انہیں اب سمجھ آیا کہ وہ لیمپ اتنے مہنگے کیوں تھے. دن کی روشنی میں سیلز مین کبھی بھی انہیں وہ پیٹرن نہیں دکھا سکتا تھا. شاید اس لیے اس نے صرف ڈیزائن اور روشنی ہی کے حوالے سے بتایا تھا. اور پھر ایک ہفتہ پہلے جب وہ اس کے دراز صاف کرتے ہوئے سالار کی ویسٹ پیپر باسکٹ میں سے ایک پوسٹ کارڈ لے کر اس کے پاس آئی.
یہ کام کر؟
پھینک دیا میں نے اسے, بیکار ہے.
لیکن وہ اس کارڈ کو لیے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی. سالار یہ دیکھو کتنی خوبصورت جھیل ہے, دیکھو کتنا سکون ہے اس جگہ پر.
سالار نے اس کے ہاتھ سے پوسٹ کارڈ لے کر اس پر ایک نظر دوڑائی. وہ کسی پینٹنگ کا پوسٹ کارڈ تھا, کسی پینٹر کا بنایا ہوا. لینڈسکیپ, ایک بہت چھوٹی سی کم گہرے کنارے والی جھیل جس کے کنارے جنگلی پھولوں سے بھرے, اور ان پھولوں کا عکس جھیل کے پانی میں تھا. کچھ پھول ٹوٹ کر پانی کی سطح پر تیر رہے تھے. جھیل کے کنارے ایک چھوٹی سی لکڑی کی کشتی جس میں صرف ایک چپو پڑا تھا, اور وہ کشتی صرف دو افراد کے لیے تھی. جھیل کی سطح پر کچھ آبی پرندے تیرتے نظر آ رہے تھے.
یہ سندل کی لکڑی سے بنی ہوئی ہے نا, اس کشتی کا رنگ دیکھو, یہ سندل کا رنگ ہے.
وہ پوسٹ کارڈ پر انگلی پھیرتے ہوئے اسے بتانے لگی.
ایسا لگتا ہے جیسے صبح سویرے کو اس کشتی میں بیٹھ کر کہیں جاتا ہو. ایک مہکتی خوشبودار بھیگی ہوئی کشتی, ہوا چل رہی ہو, اور جھیل میں اس کشتی میں بیٹھے خوشبودار ہوا کے جھونکے. اوف, ذرا تصور کرو. اس نے بے اختیار گہری سانس لی, یوں جیسے اپنی قلمی تصویر سے खुद महसूस हुई हो। कितनी सिरेनिटी है ना इस सीन में, ऐसे जैसे जन्नत हो। मैं ना बताती तो तुम तो उसे फेंक ही रहे थे। वो बेख्तियार उसका चेहरा देखने लगा। वो वाकई उसकी जिंदगी में ना आती तो वो जन्नत को इसकी पिक्चर बना लो सेलफोन के साथ। इमामा की आवाज ने उसे यकदम चौंका दिया। वो अब भी उस अक्स को देखने में मसरूफ थी। सालार ने सेलफोन निकालकर चंद तस्वीरें खींची और सेल उसे थमा दिया। उसने बारी बारी इन तस्वीरों को देखा, फिर मुतमईन हो गई। चलें? हाँ, वो यकदम जैसे ख्यालों से बाहर आई। इन दोनों ने एक आखिरी नजर उस अक्स पर डाली और फिर आगे चल पड़े। सालार ने चलते हुए उसका हाथ पकड़ा। खामोश क्यों हो गए, कोई बात करो, इमामा ने चंद कदम चलने के बाद उससे कहा। तुम करो, मैं सुन रहा हूं। हो सकता है तुम्हें मुझसे पहले जन्नत मिल जाए। इमामा ने अपने जुमले का मफहूम समझे बगैर उसे तसल्ली दी। वो हंस पड़ा। चाहता तो मैं भी यही हूं, वो मध्यम आवाज में बुड़बुड़ाया। तुमसे पहले मरना चाहता हूं मैं। उसे चलते हुए ठोकर लगी। कोई चीज जैसे उसके जिस्म से एक लम्हे के लिए थर्राती हुई गुजरी थी। वो जो जन्नत ढूंढती फिर रही थी, इससे पहले जो शह सामने खड़ी थी वो उसे भूल गई थी। उनका साथ सालों का था और उनका साथ महीनों का था। उसने सालों में कभी जुदाई महसूस नहीं की थी, लेकिन वो इन हफ्तों का साथ खत्म होने का सोचकर भी लरस गई। तुम क्यों कह रहे हो इस तरह? उसने सालार से अपना हाथ छुड़ा लिया। तुम्ही ने तो कहा था शायद मुझे तुमसे पहले जन्नत मिल जाए। लेकिन मैंने मरने का नहीं कहा। किसके बगैर मिल सकती है? वो बोल नहीं सकी। नीम तारीखी में इस रविश पर एक दूसरे के मुकाबले खड़े वो एक दूसरे का चेहरा देखते रहे। फिर सालार ने उसकी आंखों में पानी उमटते देखा। ठीक है, जो मर्जी कहो, मैंने सिर्फ तुम्हारी बात दोहराई थी और मेरा वो मतलब नहीं था जो तुमने निकाला। मैं समझता हूं। इमामा, क्या तुम जन्नत में मुझे अपना पार्टनर मुंतखब करोगी? वो बोल नहीं सकी। वो हंस पड़ा। यानी नहीं, मैंने ये कब कहा? लेकिन तुमने कुछ भी कब कहा? मैं सोच रही थी। सोच लिया? फिर अब बताओ तुम्हें क्या हुआ है? जन्नत की बात तुमने शुरू की थी। शायद तुम्हें यकीन नहीं है। यकीन करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर तुम जन्नत में पहुंच गए ना तो फिर तुम्हें ही चुनना पड़ेगा, और अगर कोई और भी पहुंच गया तो? उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। दोनों के दरमियान खामोशी का लंबा वक्फा आया था। इस और का तारुफ ना इमामा ने मांगा था ना सालार ने करवाया था, मगर इस और ने इसको सालार से नजरें चुराने पर मजबूर किया था। वो नजरें ना चुराती तो इतनी तकलीफ ना होती सालार को जितनी अब हुई थी। वो उसे कह नहीं सकी। बात उसके इंतखाब पर कभी नहीं रही थी, बात जलाल के इंतखाब पर थी। उसका इंतखाब जन्नत में भी शायद वो कभी ना होती, लेकिन ये एतराफ करने में कोड़े खाने जैसी जिल्लत थी। चुप बेहतर थी, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं हुआ कि इस वक्त इसकी ये चुप सालार को कोड़े की तरह लगी थी। इस रविश से रोशनियों तक का बाकी फासला खामोशी में तय हुआ था। सिकंदर उस्मान को चंद लम्हों तक अपनी समात पर यकीन नहीं आया था।
आपको कोई गलतफहमी हुई है, वो प्लॉट तो बिक ही नहीं सकता, सालार के नाम है वो,
उन्होंने एहतशामुद्दीन से कहा। वो उनके लिए कारोबारी दोस्त थे और चंद मिनट पहले उन्होंने सिकंदर उस्मान को फोन करके एक प्लॉट की फरोख्त के बारे में शिकायत की थी। उनके किसी दोस्त ने उन्हीं के वकील के जरिए एक ऐसे प्लॉट को खरीदा कुछ ही दिन पहले जो सिकंदर उस्मान का था और जिसको एक डेढ़ साल पहले एहतशामुद्दीन ने खरीदने की ऑफर की थी, लेकिन सिकंदर ने तब उन्हें यह बताया था कि वो प्लॉट जायदाद की तकसीम के दौरान सालार के नाम हो चुका है। अलबत्ता उन्होंने वादा किया कि अगर कभी इस प्लॉट को फरोख्त करने की जरूरत पड़ी तो वो एहतशामुद्दीन को ही तरजीह देंगे।
यार, मेरे वकील के जरिए सारा पेपर वर्क हुआ है, आप कहें तो आपको न्यूज़पेपर में प्लॉट की मुंतकली का एड भी भिजवा देता हूं।
आपके बेटे ने ये प्लॉट 1.5 करोड़ में बेचा है। अरे मुझे तो अफसोस सिकंदर इस बात का है कि मेरे वकील ने मुंतकली के बाद मुझे बताया, वो भी इत्तेफाकन। कुछ देर पहले भी बता देता तो मैं कभी ये प्लॉट किसी और को ना खरीदने देता।
चंद लम्हों के लिए सिकंदर उस्मान का सर घूम कर रह गया।
मैं अभी सालार से बात करके दोबारा आपसे बात करता हूं।
इन्हें अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि वो उनको बताए बगैर प्लॉट बेच सकता है। सालार उस दिन इस्लामाबाद में था और इस वक्त अपने किसी काम से मार्केट की तरफ जा रहा था जब उसे सिकंदर की कॉल मिली। वो उस वक्त एक सिग्नल पर रुका था। उसके हेलो कहते ही सिकंदर ने दूसरी तरफ से फौरन पूछा,
सालार तुमने अपना प्लॉट बेच दिया?
चंद लम्हे सालार कुछ नहीं बोल सका। प्लॉट की फरोख्त का सिकंदर को इतनी जल्दी पता चल जाएगा उसे अंदाजा नहीं था। उसकी चंद लम्हों की खामोशी ने सिकंदर के बदतरीन खदशात की तस्दीक कर दी।
तुम अभी मेरे ऑफिस पहुंचो,
उन्होंने बेहद सर्द महरी से कहकर फोन बंद कर दिया। उसके ऑफिस पहुंचकर कुर्सी पर बैठते ही सिकंदर ने उससे कहा,
कब बेचा था प्लॉट?
उनका लहजा कतई खुशगवार नहीं था। वो उसकी जायदाद थी लेकिन वो बेचने के लिए नहीं दी गई थी।
पिछले महीने डैड।
क्यों?
मुझे कुछ रकम की जरूरत थी,
सालार जवाब देते हुए झिझका।
किस लिए रकम की जरूरत थी सालार?
मुझे इमामा को एक रिंग खरीद कर देनी थी।
व्हाट?
सिकंदर को लगा उन्हें सुनने में गलती हुई है। इमामा के लिए एक रिंग खरीदनी थी।
1-2 लाख की रिंग के लिए तुमने प्लॉट बेच दिया?
सिकंदर ने उसके इस जवाब से बिल्कुल गलत नतीजा निकाला।
यार अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते, बैंक से पर्सनल लोन ले लेते या मुझसे कहते।
मैं लोन लेकर उसे गिफ्ट नहीं करना चाहता था और 1-2 लाख की अंगूठी नहीं थी, कुछ ज्यादा महंगी थी। आप इतने पैसे कभी ना देते मुझे।
कितनी महंगी होती? 4 या 5 लाख की होती, चलो 10 लाख की होती, दे देता मैं तुम्हें।
सिकंदर बेहद खफा थे। वो प्लॉट 1.25 करोड़ का था जिसे वो 1.5 करोड़ में बेच आया था। 10 लाख की बात नहीं थी।
फिर?
सालार ने अपना गला साफ किया। 13.7। ये वाहिद तरीका था जिससे वो संगूठी की कीमत 3 हिस्सों में कर पाया।
क्या?
13.7। सिकंदर को चंद लम्हे सांस नहीं आई। उन्हें पहली बार उसकी बात समझ में आई थी।
13.7 मिलियन की रिंग दी है तुमने उसे?
उनका जहन जैसे भग से उड़ गया। सालार सर झुकाए टेबल पर पड़े पेपर वेट पर उंगलियां फेर रहा था। फिलहाल वो इस कमरे में कुछ और कर भी नहीं सकता था।
सालार, गॉड, 1.37 करोड़ रुपए की रिंग खरीद दी तुमने उसे?
सिकंदर उस्मान को खुद भी समझ नहीं आई कि उन्होंने दोबारा उससे यह सवाल क्यों पूछा था। जी, इस बार सालार ने नजरें उठाकर उन्हें देखते हुए सिर्फ यही कहा। सिकंदर बेयकीनी से उसकी आंखों में देखते रहे। सालार ने नजरें चुरा ली। अब वो उनके उकब में दीवार पर लगी पेंटिंग देख रहा था। इसके अलावा वो और क्या करता? उसके चेहरे पर नजरें जमाए सिकंदर ने रिवॉल्विंग चेयर की पुश्त से टेक लगाई। वो अगर इस वक्त इसे उल्लू का पट्ठा कहते तो ठीक ही कहते।
कहां से ली थी रिंग?
जी, टिफनी से। उन्हें ऐसे ही किसी नाम की तवक्का थी।
डिजाइन कराया होगा ना?
इस मालियत की अंगूठी नादिर ही हो सकती थी।
जी, ज्वेलरी स्टेटमेंट।
उसने टिफनी की सबसे महंगी रेंज में आने वाली ज्वेलरी की कलेक्शन का नाम लिया। वो जिंदगी में हमेशा कीमती चीजें खरीदने और इस्तेमाल करने का आदी था। सिकंदर ये जानते थे, लेकिन ये पहला मौका था कि उन्हें उसकी इस आदत पर एतराज हुआ था।
नहीं तो इससे ज्यादा महंगी रिंग नहीं थी कोई? अभी दूसरा प्लॉट पड़ा था, 4 हीरे और लगवा देते इसमें।
सिकंदर ने टेबल पर पड़े सिगार केस से एक सिगार निकालते हुए बेहद संजीदगी से उससे कहा। सालार के दाएं गाल में डिंपल पड़ा। उसने यकीनन अपनी मुस्कुराहट जब्त की थी। सिकंदर का ख्याल था ये मुस्कुराहट शर्मिंदगी की थी। उनके पांव तले से यकीनन जमीन खिसक जाती अगर उन्हें ये पता चल जाता कि उसने पहले दोनों प्लॉट्स बेचकर उसे एक नेकलेस देने का सोच रखा था। लेकिन फिर ये एक इत्तफाक था कि उसे एक अंगूठी देने का ख्याल आया जो इमामा मुस्तकिल तौर पर
पहन सकती थी। उमेरा अहमद का नॉवल आबे हयात। इसके साथ ही कैसेट नंबर 7 अपने इख्तिताम तक पहुंची। बकिया के लिए कैसेट नंबर 8 लगा लीजिए। शुक्रिया।